इस वक्त हम चलेंगे अल्लाह के नबी सल्लम का हुलिया मुबारक कैसा था, बुक खोलना चाहें तो खोल लीजिए, क्योंकि अभी हमने बात की कि नबी सल्लम के शमाइल यानी आपका किरदार, आप कैसे थे, ये सब भी सीरत का हिस्सा है। तो ये बात जो हम अब पढ़ने लगे हैं ये कहाँ से मिली, क्या किसी लिखारी की बातें हैं, किसी शायर का तखय्युल है? नहीं, इमाम इब्ने हज़म का नाम आपके सामने लिखा हुआ है। ये अपने दौर के एक बहुत बड़े इमाम थे। इन्होंने सही अहादीस और सहाबा कराम के अकवाल में से वो सारी चीज़ें जमा की जिन्होंने अल्लाह के नबी को देखा हुआ था, तो उसकी रोशनी में आपका हुलिया मुबारक क्या बयान किया गया, आइए पढ़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो बहुत लंबे थे ना छोटे कद के थे, यानी मीडियम कद था आपका, बल्कि आपका कद मुबारक दरमियाना था। रंग के एतबार से आप ना बिल्कुल सफ़ेद थे ना बिल्कुल गंदमी थे, बल्कि रंग सफ़ेदी के साथ सुर्खी लिए हुए था। आप सोचिए कि सबसे मेरा लिए खूबसूरत कॉम्प्लेक्शन यही होता है, वाइट और रेड, एक तो बिल्कुल चमड़े की तरह सफ़ेद रंग होता है और आप सफ़ेद और सुर्ख थे। चेहरा मुबारक चौदहवीं रात के चांद की तरह रोशन चमकदार, सर के बाल ना बिल्कुल सीधे न बिल्कुल पेचदार, यानी जुल्फ़ों की तरह जैसे घुंघरियाले बाल नहीं थे, बल्कि हल्की सी पेचीदगी के साथ घुंघरियाले थे, यानी थे सीधे लेकिन थोड़े थोड़े करली थे। आज़ा के जोड़ों की हड्डियां मोटी और पुरगोश थी। पलके स्याह सुरमुगी, सुरमुगी क्या होती हैं भाई, सुरमा लगी हुई, यानी आपकी पलके घनी थी कि दूर से देखने वाले को ऐसे लगता था कि आपने सुरमा डाला हुआ है। आंखों की सफ़ेदी में बारीक सुर्ख डोड़े थे, यानी ये जो हमारी आंखों का सफ़ेद हिस्सा होता है इसमें हल्की हल्की सुर्खी थी। दांत दंदान मुबारक खूबसूरत और चमकदार थे। कुछ लोगों के दांत वाकई इतने जमे होते हैं कि जब वो बात करते हैं तो दिल चाहता है कि उनके दांत देखते रहें। अल्लाह के नबी के दांत भी बहुत खूबसूरत थे। दहन ये जो होता है माउथ, यानी ये जिससे मुँह हम खाते हैं खाना, दहन एतदाल के साथ फराख था, यानी ना तंग था और ना बहुत खुला था। फराख यानी तंग ना था, यानी जो मुंह का दहन है ये बहुत चौड़ा भी अच्छा नहीं लगता, बहुत तंग भी अच्छा नहीं लगता, मीडियम सा था। नाक कैसी थी, खूबसूरत थी, यानी पतली नाक थी या जैसे बैलेंस नाक थी। रफ्तार तेज़ थी, यानी चलते कैसे थे, मरियल चाल नहीं थी। अब आपके मेरे लिए क्राइटेरियन आ रहा है ना, शक्ल आपकी जो हम पढ़ रहे हैं तो वो तो हम अपनी नहीं बदल सकते, अगर किसी हद तक हम उसको उनके तरीक़ों का बना लें तो फिर इंशाल्लाह अच्छा रहेगा, लेकिन यह है कि जो उनके औसाफ थे वो तो अपना सकते हैं। तो चाल कैसी थी, तेज़ थी, चलते तो मालूम होता कि आप ढहलवान ज़मीन पर उतरें, यानी यूँ चलते थे, यूँ ये देखिए हाथ की तरफ, जैसे कोई ऊपर से नीचे आता है ना, सीना बिल्कुल चौड़ा और झुके हुए, ये नहीं कि अकड़ के सीना, आप इसको अपोजिट सोचें, गर्दन अकड़ी हुई पीछे से ऐसे हो। आप आज हम अपने लोगों की चाल खुद देख लें, और ख़ास तौर पर अल्लाह हिदायत दे हम सबको, जो लड़कों को तो छोड़ दीजिए, एक वक्त था कि लड़के सीना तान के चलते थे, अब लड़कियों के ड्रेस ही ऐसे हैं कि वो बेचारी झुक ही नहीं सकती, तो अल्लाह के नबी यूं झुकते थे, यानी आगे की तरफ झुका होता था, पीछे की तरफ नहीं होता था। जब आप तवज्जो फरमाते तो पूरे बदन के साथ फरमाते, कैसे, बस आप देखिए कि जैसे मेरे साइड पे उल्फत बैठी हुई है ना, तो मुझे इनको मुझसे कोई काम है तो मैं इधर देखते हुए इनसे बात करूं नहीं, और एक सूरज ये कि मैं बस इनको यूं देखूं, और दूसरी सूरज ये कि मैं पूरी इस तरफ करके बात इनसे करूँ। अल्लाह के नबी से जब कोई बात करने आता था तो आप पूरी तवज्जो से उसकी तरफ देखते थे, यानी अगले को तवज्जो देते थे, यानी सिर्फ गर्दन फेर कर मुतवज्जे नहीं होते, निगाह अक्सर नीची रहती थी। हथेलियाँ पुरगोश थी, आप देखिए कि लोगों ने एक एक चीज़ आपकी नोट की ना, आपके हाथ गुदले थे जैसे गोश्त होता है ना, और मुलायम थे। एक सहाबी कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी के हाथ को जब छुआ तो मुझे नहीं लगा कि दुनिया का कोई रेशम यानी कोई सिल्क आपके हाथों से भी नरम है, और आप देखिए अंदर नरमी होती है तो बाहर भी आ जाती है। एड़ी में गोश्त कम था, यानी एड़ियाँ पीछे से चपटी थी, बहुत गोल गोल नहीं थी। दाढ़ी मुबारक घनी और बाल से आते, अब देखिए कुछ लफ्ज़ मैं नरम कर रही हूँ ना, तो आपको अगर मुश्किल लगता है तो उसके नीचे आप रीश लिखा है तो उसका मनी दाढ़ी होता है, तो आप उसको खुद ही दाढ़ी कर लें। दाढ़ी मुबारक घनी और बाल से आते, आपके पाँव के तलवे कदरे गहरे थे, यानी तलवा जो सीधा नहीं, पाँव ऐसे देखे करने के बजाय बीच में से ऊपर उठा होता था। सर के बाल ज़्यादा लंबे होते तो कान की लौ तक या शाने तक पहुंच जाते थे, वरना निस कान की लौ तक या शाने तक रहते। आपके सर और दाढ़ी के बाल 20 से ज़्यादा सफ़ेद न थे, यानी गिनती के बाल सफ़ेद थे। अब आप देखिए कि आज के दौर में बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं हमने ख्वाब में अल्लाह के नबी को देखा, सफ़ेद दाढ़ी थी, बुज़ुर्ग थे। अब आप ये सारा हुलिया भी आपने मेरे साथ सुन लिया, आप करें क्या? अकेले में बैठेंगी ना बाद में, तो आप इसको खोलिए और फिर इमेजिनेट करें कैसा इंसान जहन में आता है। इससे क्या पता चलता है कि दीनदार की ज़ाहरी पर्सनैलिटी भी मैटर करती है। अब इसकी जगह आप अपोजिट देखें, यहाँ तो बड़ा मुख्तसर हुलिया है, हमने रबी अव्वल के सेशंस में दुरूद शरीफ के मसाइल बुक पढ़ने के दौरान भी आपका हुलिया पढ़ा था उम्मे माबत की रिवायत में, तो उसमें और भी ज़्यादा डिटेल्स हैं। लेकिन आप देखिए कि क्या आपको अल्लाह के नबी को देखकर तसव्वुर में आता है कि आप कैसे थे। आगे बल्कि हुलिया आ रहा है, इन दोनों को पढ़ के फिर हम थोड़ी सी बात करते हैं। ये जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं इसमें मोर लाइक अल्लाह के नबी सल्लम की जिस्मानी हैयत है। अब आइए ज़रा आपका हुलिया कैसा था उम्मे मावत की ज़ुबानी सुनते हैं। उम्मे मावत कौन थी? ये वो औरत है जिनके पास अल्लाह के नबी सल्लम हिजरत के सफ़र के दौरान रुके थे। अबू बकर आपके साथ थे, हिजरत की राहें थी, रास्ते में प्यास लगी, भूख लगी, इस औरत की कुटिया में गए, कहा दूध है? कहने लगी कहाँ, इतने फाके हैं, दूध कहाँ से आएगा? अबू बकर ने कहा अगर आप इजाज़त दो तो हम कोशिश करें बकरी का दूध निकालने की। कहने लगी कर लें। फिर अल्लाह के नबी सल्लम ने उस बकरी के थनों पर अपने हाथ मुबारक फेरे और वो उसके थन दूध से भर गए। अल्लाह के नबी ने पिया, अबू बकर ने पिया, उस औरत के घर के सारे बर्तन भर गए। अल्लाह के नबी तो चले गए लेकिन वो औरत इतनी ज़्यादा इम्प्रेस थी, घबराई हुई थी कि जब उनके शौहर घर आए, इनको नहीं पता कौन आके गया है, खुद भी अभी इस्लाम पे नहीं थी, पता ही कुछ नहीं था। बहरहाल जब आई तो अपने शौहर को अब अल्लाह के नबी सल्लम का हुलिया एक शेर की सूरत में, पूरी नज़म है आप अरबी में देखना चाहें तो देख सकते हैं, तो उसमें बयान करती हैं जिसका खुलासा क्या था। कहती हैं कि पाकीज़ा रू यानी चेहरा बड़ा पाकीज़ा था, कुशादा चेहरा, पसंदीदा खू, ना तोंद निकली हुई यानी पेट बाहर नहीं निकला हुआ था आपका, ना चिंदरिया के बाल गिरे हुए यानी माथे पे बालों की वो लट्टे जो पहन लेते डाल लेते ना कुछ हीरो नुमा लड़के हमारे, वो नहीं थी। जेबा साहिबे जमाल, आंखें स्याह व फराख, बाल लंबे और घने, आवाज़ में भारीपन, बुलंद गर्दन, रोशन मर्दमक, सुरमगी चश्म, बारीक पेवस्ता अबरू, स्याह घुंघरियाले बाल, खामोश वक्कार के साथ गोया दिल बस्तगी लिए हुए, दूर से देखने में जीवनदा दिल फरेब, यानी मुश्किल लफ्ज़ है आप कह लें कि बस खूबसूरती के लिए अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, करीब से नहायत शीरी कमाल हसीन, शीरी कलाम, वाज़े अल्फाज, कलाम कमी और बेशी अल्फाज से मौर्रा यानी लफ्ज़ बहुत नहीं बोलते थे, बड़े नपे तुले लफ्ज़ बोलते थे, तमाम गुफ्तगू मोतियों की लड़ी जैसी पिरोई हुई, दरमियाना कद के कोताही से हकीर नज़र नहीं आते, न तवील की आँख उससे नफ़रत करे, ज़िबनदाए नहाल की ताज़ा शाख, ज़िबनदाए मंज़र वाला क़द्र, रकीक ऐसे के हर वक्त इसके गिर्द पेश रहते हैं, यानी इतना खूबसूरत नरम मिजाज थे, फ़बीमा रहमत मिन अल्लाह लिन्त लहुम, कुरान पाक में आता है, यानी आप इतने सॉफ्ट थे कि लोग आपके इर्द गिर्द रहना पसंद करते थे। जब वो कुछ कहता है तो चुपचाप सुनते हैं, यानी लीडरशिप क्वालिटीज़ ऐसी थी कि सहाबा आपकी बात इस तरह खामोशी से सुनते थे कि गोया के हर बात उनको कही जा रही है। हुक्म देता है तो तामील के लिए झपटते हैं, यानी आपकी बात ऐसी होती थी कि आपकी बात को सुनकर कोई अपनी जगह पे नहीं बैठता था। मखदूम कौन? जिसकी खिदमत की जाए, लोग आपकी खिदमत करना पसंद करते थे। मुता जिनकी इताअत की जाए, बात मानी जाए। ना कोताह सुहन ना तुरशरू, कोताह सुखन क्या कहते हैं कि बहुत ही आहिस्ता बोलना या बहुत ही आहिस्ता ऊंची सुनना, यानी बोलने और सुनने में बड़े नरम थे, मीडियम थे, और सख्त बातें नहीं करते थे, तानों में चुभे हुए तीर नहीं देते थे और ना फजूल गो थे। अब आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लम जैसे हम बन सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, हम सब अपना जायज़ा लें। कुरान का जो सफ़र आप शुरू कर रहे हैं ना, इसमें आपको ये सारी चीज़ें फ़ायदा देंगी, बातें कम काम ज़्यादा। आपने अगर अल्लाह को वक्त देना है ना, तो आपको दूसरी चीज़ों से वक्त कुछ कम करना पड़ेगा। इस हुलिये को और इस बात को सुनते वक्त आपके जहन में क्या आया, कोई शेयर करें, बिल्कुल पर्सनल, को ट्रू फीलिंग्स हैं तो शेयर कीजिए जी। आप सिस्टर, आप क्या सोच रहे थे सुनते हुए? हम कुछ भी नहीं हैं, और जिन्होंने इतना बड़ा एहसान किया हम पर कि अगर आप ना होते तो आज हम सोचिए कहाँ पड़े होते, किसी बुत के आगे मथा टेक रहे होते और किसी जगह जाके गलत और ख़राब काम कर रहे होते। اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کی قدر کرنے والا بنا دے. جی ادھر سے بیٹا آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ بالکل, یعنی آج آپ دیکھیے کہ شاؤٹ کر کے بولتے ہیں ہم لوگ, چلتے اکڑ کے, چال دیکھیں ذرا, اور خاص طور پہ جب ہم اچھے کپڑے پہن اور کے برات کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں تو ہماری چال ہی نہیں سیدھی ہوتی. ہاں اللہ کے نبی کے اندر عاجزی تھی, آپ کے اندر اتنا حسن تھا. آپ یہ بات لکھ لیں, سچا مومن دنیا میں بھی پسندیدہ ہوگا, بس ایک لفظ کی بات ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دیندار ہیں اور لوگوں کی نظروں میں آپ لوگ آپ کو دیکھ کے چڑ کھائیں اور آپ پان کی پیکے پھینکیں, تھتکاریں اور آپ کے منہ سے بو آئے اور آپ کے بال بکھرے ہوں. بڑا صاف ستھرا, شستہ, کلین, خوبصورت انسان ذہن میں آتا ہے سچا دین والا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس طرح کا بنا دے. آپ سب اس کے اوپر اپنے لیے ایک معیار رکھیں. آپ لوگ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بھی کوئی چیز ہم پڑھیں نا تو ساتھ چپکے چپکے خود کلامیاں کریں, بک کے ساتھ اس طرح کے انڈیکس پیپر لگا لیں, جہاں کوئی بات سنیں اور پڑھیں فوراً نیت کر لیں کہ میں نے بھی ایسا بننا ہے, چپکے سے, اور دل میں خاموشی سے جہاں بھی اللہ کے نبی کی بات پڑھ رہے ہیں, کوئی دل میں محبت کا جذبہ ابھرتا ہے, کوئی خواہش آتی نا تو اللہم صلی علی محمد درود پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے درودوں کے تحفے بھیجنے ہم نے اس سفر کے دوران کہ وہ واقعی ہمیں محسوس ہو جائے کہ ہم سب کے لیے کتنی محنتیں کر کے گئے, کتنی قربانیاں کر کے گئے. تو یہاں پہ آپ کو ایک اسٹریچ دیں گے, کوئی اور شیئر کرے, کوئی ادھر سے شیئر کرے. جی صوبیہ جی, آپ سنتے ہوئے کیا سوچ رہے تھے؟ جی بالکل, آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی سے ملاقات کا شوق ایمان کی علامت ہے. آپ سوچیں نا کہ ہم نے دنیا میں تو دیکھا ہی نہیں ہے, تو اگر کل ہمارے برے اعمال کی وجہ سے وہاں بھی محروم کر دیے جائیں, ایسا ہوتا ہے نا. ہر ایک کو تو اسٹیج پہ نہیں بلایا جاتا, کوئی وی آئی پی لاؤنج میں بٹھائے جاتے ہیں, کوئی باہر نکال دیے جاتے ہیں. تو یہ ممکن ہے کہ ہم جنت میں جائیں انشاءاللہ, لیکن 100% یقین نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکے. تو پھر آج سے تڑپ رکھنی ہے کہ اللہ ہم نے تیرے نبی کو دنیا میں نہیں دیکھا, ہم ان سے محبت کرتے تھے, ہم ان کو دیکھنا چاہتے تھے, تو ہمیں جنت میں ضرور ان کا دیدار کروانا. کچھ لوگ دنیا میں کئی وظائف اور درود پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا جائے, وہی کام کریں جو اللہ کے نبی نے سکھایا ہے. اور اگر اللہ کے نبی ہمیں خواب میں دکھ جائیں اور ہمیں ڈانٹ رہے ہیں تو کیا ملا؟ عزت کی بجائے بے عزتی ہو گئی نا. تو دعا کریں کہ جب بھی اللہ کے نبی کو میں دیدار کروں دنیا میں, مطلب خوابوں میں اور جنت میں, تو اللہ کے نبی مجھ سے خوش ہوں, ناراض نہ ہوں. انشاءاللہ یہاں پہ ہم ایک اسٹاپ لیں گے,